तो श्लोक संख्या 10 बोर्ड पे लिखा है, आप लोग दोहराएंगे। एतु माम रुद्र गीतेना सायं प्रातः समाहितः स्तुवन्तहं काम वरान्दे स्तुवन्त्यहं काम वरान् दाशे प्रज्ञां च शोभनाम् एतु माम रुद्र गीतेन सायं प्रातः समाहितः स्तुवन्त्यहं काम वदान् दाशे प्रज्ञां च शोभनाम् ये जो लोग तू लेकिन माम मुझको रुद्रगीत द्वारा सायं संध्या समय रात काल में समाहितः सावधान होकर स्तुवन्ति स्तुति करते हैं या प्रार्थना करते हैं। अहम मैं काम वरान इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए समस्त अभिष्ट वर देता हूँ, दास्य प्रदान करूँगा प्रज्ञा और बुद्धि च भी शोभनाम दिव्य। अनुवाद तात्पर्य श्रीमदेश भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा। जो लोग शिवजी द्वारा प्रणीत स्तुति से प्रातः तथा सायकाल मेरी प्रार्थना करेंगे उन्हें मैं वर प्रदान करूँगा। इस तरह वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ सुबुद्धि भी प्राप्त कर सकेंगे। तात्पर्य सदबुद्धि का अर्थ है भगवान के धाम को वापस जाना। इसकी पुष्टि भगवद गीता 10:10 में इस प्रकार हुई है, तिशाम सतुक्ता नाम भजताम प्रतिपूर्वकम दराम बुद्धियोगम तम में इन माम उपयान्ति थे। जो निरंतर मेरी भक्ति करते हैं तथा प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं उनमें ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ कि जिससे वे मेरे पास आ सके। जो अपनी विविध इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से भगवान की प्रार्थना करता है उसे जान देना चाहिए कि इच्छा की चरम पूर्ति भगवान के धाम को वापस जाना है। इस श्लोक में इंगित किया गया है कि जो राजा प्राचीन परिषद के पुत्र पिछताओं के कार्यकलापों का स्मरण करता है उसका कल्याण और उद्धार होगा। अतः राजा के उन पुत्रों के लिए क्या कहना जो भगवान से प्रत्यक्ष जुड़े हुए थे। परंपरा पद्धति की यही रीत है, यदि हम आचार्यों का अनुसरण करते हैं तो हमें अपने पूर्ववर्तियों जैसा लाभ प्राप्त होता है। यदि कोई अर्जुन के निर्णयों का अनुसरण करता है तो समझो कि वह भगवान से सीधे भगवद्गीता सुन रहा है। प्रत्यक्ष भगवान से भगवद्गीता सुनने तथा अर्जुन जैसे महापुरुष का जिसने भगवद्गीता पहले भगवान के मुख से सुनी थी अनुसरण करने में कोई अंतर नहीं होता। कभी कभी मूर्ख लोग तर्क करते हैं कि इस समय कृष्ण उपस्थित नहीं है इसलिए उनसे प्रत्यक्ष उपदेश प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे मूर्ख यह नहीं जानते कि भगवद गीता के प्रत्यक्ष सुनने तथा उसके पढ़ने में तब तक कोई अंतर नहीं है जब तक इसे जैसा वो है उसी रूप में स्वीकार किया जाता है जिस रूप में इसे भगवान ने कहा था। किंतु यदि कोई अधूरी विवेचना से भगवद गीता समझना चाहते हैं तो वह भगवद गीता के आदर्शों को कभी नहीं समझ सकता, भले ही वह लौकिक दृष्टि में बहुत बड़ा विद्वान क्यों न हो। अज्ञान दिविदंधस ज्ञानांजन सदा चक्षुरुन्मीलितं जयेन तस्मै श्री गुरवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्नवश्नवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण बाणां सहगण ललिता शिवशाखन्वितंश्च मुखं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयत गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुनदीनदानिन जयतं सुरतुपङ्गौ मम मन्दमतेर्गति मत्सदवस्वपदाम्बोजौ श्रीराधामदनमोहनौ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। हेतु माम रुद्र कीर्तन साय प्रातः समाहितः स्तवंत्यहं काम वरान दास्य प्रज्ञां च शोभनम् शोभना। तो श्रीमद् भागवतम के इस 30वें अध्याय में हम लोग प्रचेतस के कुछ चरित्र का श्रवण करते हुए उनके द्वारा भगवान शिव जी के द्वारा गाया गया जो गीत है जिनको रुद्र गीत कहते हैं, उन रुद्र गीत के द्वारा भगवान की उन्होंने स्तुति किया और स्तुत भगवान अष्ट भुजाओं के साथ उन दसों पचेतस के सामने प्रकटित हो गए। भगवान का अत्यंत सौंदर्यमय रूप को देख करके पचेतागण चकित होकर के उनका दर्शन करने लगे। तब शिव भगवान ने उनको कहा कि वरम विनिद्ध भद्रम वो हे पचेतसगण, आप लोग का कल्याण हो। हिंद्रूप नंदन, आप लोग कुछ वर की याचना करो। वरम विनिद्ध, आप कुछ हमसे मांगो। भगवान की इच्छा होती है कि जीव उनके पास से कुछ मांगे। ऐसा नहीं है कि मांगने के लिए मंदिर नहीं जाना चाहिए। श्री ध्रुव महाराज मांगने के लिए तपस्या किया, उनको कुछ चाहिए था। संसार में व्यक्तियों के हृदय में नाना प्रकार की कामनाएं भरी रहती है और आप उनको कहेंगे कि आप केवल निष्काम होकर के भजन कीजिए, आवश्यकता नहीं है। हम कितने भी अपने आप को निष्काम क्यों न दिखाएं, लेकिन हमारे हृदय में भी नाना प्रकार की कामना भरी रहती है। इसके केवल प्रचार से क्या हो जाएगा? जीवों का हृदय कामनाओं का पुंज है। जब तक जीव भगवत प्राप्ति नहीं करेगा तब तक उनके हृदय में कामना भरी रहेगी। लेकिन उन कामनाओं को बुद्धिमान व्यक्ति डाइवर्ट करते हैं, कामना रहेगी लेकिन वरम न याचे स्वामी। तू महाराज के पद चिन्हों का भक्त लोग अनुसरण करते हुए कहते हैं, हे भगवान, जब कोई एक व्यक्ति भगवत प्राप्ति करता है उनके बाद में वो भगवत प्राप्ति के बाद जो स्तुति करते हैं वो स्तुति से बहुत सारी शिक्षा मिलती है। वो अद्भुत शिक्षाएं अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम से सीखे और उनको अपने जीवन में अपनाने की चेष्टा करे तो वो क्या नहीं प्राप्त कर सकता है। अर्थात वो सब कुछ देने वाले श्री भगवान की ही प्राप्ति कर लेता है। उनका हृदय कभी भी एक भी कामना उनके हृदय में नहीं बनती। केवल एक काम है तो केवल कृष्ण के सुख की कामना रहती है, केवल भगवान के सुख की कामना। वस्तुत तो यही व्यवसायित्मी का बुद्धि है। ये कहे गुरु नंदन, मैं कई बार इस बात को बताया है कि जीव का सेपरेट स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। जीव किसी की वस्तु है। वस्तु न अंश जीव, वस्तु न शक्ति माया और वस्तु न कार्य जगत। श्रीमद् भागवतम में जो मूलभूत वस्तु का विवेचन हुआ है, श्रीमद् भागवतम एक एक दो धर्म प्रोजित कर्तव्यत्र निर्मसनाम सताम वैद्यम वास्तवम वस्तु अत्र शिवदम तापत्रयो उन्मुनम। उन जानने योग्य जो वस्तु है वस्तु श्री भगवान है, लेकिन जीव के हृदय में जब तक उस वस्तु के प्रति उनकी प्राप्ति की लालसा नहीं होती है, उनका कुछ अनुभव नहीं आता है, तब तक जीव का हृदय कामनाओं का पुंज बना रहता है। तो जैसे तैसे व्यक्ति भगवान के भजन में लगे ये व्यवस्था देनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि ठीक है तुम्हें कुछ चाहिए तो भगवान को प्रार्थना करो और भगवान को ये अच्छा लगता है, नहीं तो क्यों बोलते थे वरम विनिद्ध भद्रम। आप वर मांगो, जहां कहीं भी भगवान बोलते हैं यही बात बोलते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जीवों के हृदय में अपेक्षा भरी रहती है कि वो भगवान से कुछ मांगे। भगवान जानते हैं बेचारा भिखारी ठहरा, उनके पास तो कुछ है नहीं। हम सब लोग वास्तव में भिखारी है, भले ही करोड़ों हमारे पास है, लेकिन उन करोड़ों को प्राप्त करके भी किस व्यक्ति का हृदय संतुष्ट है? अतम दरिद्र है वो। दारिद्र तब तक हम घसीटेंगे जब तक ये लोभ भगवत प्रेम प्राप्ति का या केवल भगवान के सुख के लिए कार्य करने की उत्सुकता जब तक हमारे हृदय में प्रकटित नहीं होगी, तब तक हम मांगेंगे ही मांगेंगे। और याद रहे ये आसान तो नहीं है, क्योंकि जीव सदैव अपने सुख के लिए कार्य करता है और उनको डायरेक्ट भगवान के सुख के लिए प्रेरित किया जाए और उनको उसमें लगाया जाए, वो कितना बेचारा कर पाएगा? जो कर पाएगा वो ठीक है, और जैसे भी करता है उसको ठीक सुष्टु कहते हुए प्रशंसा करनी चाहिए, इससे वो उत्साहित होगा। ठीक है भाई, आपको कुछ चाहिए भगवान के पास है, नो प्रॉब्लम, आप मांगिए मांगिए, भगवान सबसे बड़े दाता है। कौन बोल सकता है भगवान दाता नहीं है? इस संसार में सब जीवों को सब कुछ देने वाले केवल एकमात्र है तो कोई श्री भगवान। धीरे धीरे उनका हृदय बदल जाएगा, वो समझेगा अपने स्वरूप को कि अरे मैं मांग रहा हूं उन वस्तु से तो मुझे सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत लोगों के पास बहुत बहुत वस्तुएं जिनकी मैं डिमांड कर रहा हूं, लेकिन वो भी प्रयत्नशील है इसलिए उसमें सुख नहीं होगा, तभी तो प्रयत्नशील है। भगवान भजन करने वालों को बुद्धि देते, ददामि बुद्धि योगम तम, आज के श्लोक के तात्पर्य कहते मैं उनको बुद्धि योग देता हूं, बुद्धि प्रदान करता हूं। कैसे? न माम उपयान्ति ते, वो मेरे पास आने लायक बुद्धि जिनको शोभन कहा जाता है। इस श्लोक में ये बताया गया है, कहते प्रज्ञाम च शोभनम दास्य, मैं शोभन बुद्धि का दान करूंगा, भगवान का यह वाक्य है। इसलिए हमें चाहिए कुछ वस्तु तो बुद्धिमान व्यक्ति यही मानते कि हमें सुंदर बुद्धि दीजिए। कैसी बुद्धि? जो बुद्धि आपसे कुछ याचना न करे, केवल आपकी सेवा के द्वारा आपके सुख का विधान करने वाली बुद्धि हमें चाहिए। जिस दिन जीव इस प्रकार की याचना सीख जाएगा, उस दिन समझना चाहिए कि जीव का निस्तार में देर नहीं लगेगी। भले देखने में कुछ देर कुछ अंतराय हो सकता है, लेकिन भगवान बोले हैं उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, सुनिश्चित ऐसा सुदृढ़ विश्वास कि भगवान ने जो बोला है वो सत्यवाणी, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं, शास्त्र के वाणी के ऊपर सुदृढ़ विश्वास जिनके पास है वही श्रद्धावान व्यक्ति है, उसी को शास्त्र श्रवण की श्रद्धा बोलते हैं। और उन श्रद्धा के बल पर जो व्यक्ति भगवान के भजन साधन में लगता है, न तो उनका साधन कुंठित होता है, क्योंकि भगवान सदैव उनको बुद्धि देते हैं, एक बार की बात नहीं है, जीव भुलक्कड़ है, भगवान जानते हैं कि इस भुलक्कड़ जीव को मैं बुद्धि प्रदान नहीं करूंगा बारंबार, तब तक तो वो मेरे पास आएगा नहीं, रह रह करके जीवों के हृदय में कामना उमड़ती रहती, क्योंकि मायाबद्ध अवस्था में जीव है। भगवान जानते हैं ये सब बात, इसलिए कहते हैं कि आप लोग अपृथक धर्मा, कहते सौहार्द ना अपृथक धर्मा स्तुष्टो अहम सोचतेन वह, आप लोग के हृदय में सौहार्द है, परस्पर आप सौहार्द रखते हैं, अपनापन रखते हैं, ये मेरे हैं। बहुत सुंदर शिक्षा भगवान देते हैं। देखिए यही सौहार्द अगर हम लोग साधु के प्रति उत्पन्न कर ले और संसार के जीवों के प्रति वो सोशत का भाव उत्पन्न कर ले, कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। केवल वैष्णव ही अपने हैं ऐसा बात नहीं है, प्रत्येक जीव वसुदैव कुटुंबकम बुद्धि, विशाल हृदय वाला व्यक्ति जानता है कि वसुधा के ऊपर जितने भी जीव जीते हैं वो सब तो भगवान के अंश है, इससे सबके प्रति सुशार्थ। बहुत सुंदर बुद्धि उनको कहते हैं, भगवान कहते हैं तुष्टो हम सुचदेन वह, उन सौहार्द से मैं संतुष्ट होता हूं। दजिया सर्वभूतेषु, नारद जी बोलते सब जीवों के पर दया करने वाले व्यक्ति, सौहार्द जब तक नहीं है तो दया क्यों करेगा। अब देखिए वो सौहार्द हम में हम लोग उत्पन्न कर सके हैं, जिस सौहार्द की बात भगवान करते हैं, सुनिश्चित जवाब नहीं में होगा। भले ही हम इतने साल से भजन करते आ रहे हैं, बहुत लंबे काल से भजन करते आ रहे हैं, लेकिन क्या वैष्णवों के प्रति भी हमारा सौहार्द है? जो भगवान को प्रसन्न करने वाला है वो सौहार्द हमारे हृदय में है? विचार करें इसके ऊपर बुद्धिमान व्यक्ति। कंप्लेन लेकर के न जाए भगवान के पास या वैष्णवों के पास, हम बहुत साल से जप कर रहे, यज्ञ कर रहे, व्रत कर रहे, लेकिन हमारा कुछ होता नहीं है, कैसे होगा? जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, इन सारी बातों को भगवान ने भागवतम में रखा है। इसलिए भागवतम न केवल प्रवचन के लिए, जीने के लिए, उसको जिया जाए, भागवतम को जीवे। वैष्णव से अपेक्षा करते हैं भगवान कि मेरा भक्त उन भागवत के अनुसार अपना जीवन जीवे। वो कहते हैं कि देखिए यो अनुस्मरति संध्यायाम युष्मान अनुदिनम नरह तस्य व्यार्तिशात्म साम्यम तथा भूतेषु सुषोभितम्। कहते हैं जो दिन रात न संध्या काल, तीनों संध्या जो मेरा स्मरण करता है सुनिश्चित, ये प्रतिष्ठण आपके जैसे सौहार्द को प्राप्त करेगा। देखिए सौहार्द प्राप्ति का उपाय भी भगवान दे रहे, क्या उपाय है? तो अनुस्मरति संध्यायाम, आपकी तरह मेरा स्मरण बनाएगा कोई व्यक्ति। अनुस्मरण का अर्थ बारंबार स्मरण करेगा, और संध्या काल में विशेष, संध्या काल में सोना नहीं चाहिए। एक भी संध्या में व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए, तीनों टाइम भगवान का स्मरण करते हुए काल को यापन करने वाला व्यक्ति सुनिश्चित भूतेषु सोयदम और साम्यम त्वात्मा, तुम्हारे जैसी साम्यता को प्राप्त कर लेगा। जैसा तुम्हारा सबके प्रति सौहार्द है ना, कोई भी जीव मेरा स्मरण करता है तीनों संध्या में तो वो लोग ये प्रतिष्ठगण आपके जैसा सौहार्द को प्राप्त कर लेगा। देखिए उपाय है ना, स्वयं श्री मुक्ति वाणी है ये, तो भगवान प्रत्यक्ष बता रहे। अतः कहते कि ये तुमाम, लेकिन किंतु, तू का अर्थ किंतु, किंतु यो माम रुद्र गीते न साय प्रातः, लेकिन आप लोगों ने रुद्र गीत से मेरी स्तुति किया। वाह, कोई भी भक्त ने भगवान की जो स्तुतियां की है उन स्तुतियों को जब कोई जीव दोहराता है इससे भगवान को रहा नहीं जाता है कि कब मैं इनके ऊपर कृपा करूं। डायरेक्ट कोई व्यक्ति अगर भगवान का स्मरण करता उनको निश्चित अच्छा लगता है, लेकिन जब दूसरे के द्वारा की गई स्तुति नति और उनका पाठ, इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को भागवतम के साथ साथ वैष्णव आचार्यों का गीत के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारे पूर्वाचार्य तो यहां तक बोल करके गए हैं कि भविष्य में लोग बांग्ला सीखेंगे इस कीर्तन के लिए और चैतन्य चिंतामत के पाठ के लिए बंगाली सीखेंगे। बहुत आवश्यक है ये सारी बात। हमें आचार्यों की वाणी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये वाणी हमारे लिए क्या कहती है। कोई भी आचार्य की या श्रीमद् भागवतम की वाणी केवल दूसरों के लिए नहीं होती है, अपने लिए होती है। इसलिए दोनों तरफ छूटने वाली गन चाहिए, गोली दोनों तरफ छूटेगी ऐसी गन चाहिए, केवल सामना नहीं, टाइ 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 इधर भी छूटने जाए, खटाक 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 पीछे भी, पीछे भी आवश्यक है। क्योंकि हम लोग कोई भगवत प्राप्ति किए हुए जन नहीं है, इसलिए बहुत आवश्यक है कि वो गोली हमारी और भी छूटे। बहुत सुंदर प्रचार करना बहुत अच्छा है, लेकिन वो प्रचार हमको भी उतना ही जरूरी है जितना सामने बैठने वालों को। इसलिए कहते भागवतम जीने के लिए, लेकिन कलयुग में बहुत बड़ा दुर्दैव जिनका उत्पन्न हुआ है वो लोग भागवतम का व्यापार में लग गए हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य जीवों का है कि इतना महान ग्रंथ हाथ में आते हुए भी और उनके जरिए अपनी जीविका कमा रहे हैं। सबसे थर्ड क्लास बुद्धि है। बोलते हैं कि न सायं प्रातः समाहिता, तुम लोग अत्यंत समाहित चित्त हो करके तुमने प्रातः और साय जो रुद्र गीत द्वारा मेरी स्तुति की है इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। और स्तुवंत्य हम कामान दास्य, और जो व्यक्ति उन स्तुति को करते हैं उनकी सारी कामनाओं को मैं पूर्ण करता। प्रभुपाद जी लिखते हैं एक ही कामना है जीव की, वो अदम में सुख की लालसा, और वो लालसा केवल भगवत प्राप्ति रूप। ये लालसा जब तक उदित नहीं होती है जीव के हृदय में, वो उदित होगी भगवान की कृपा से, किसी के प्रयत्न से ये उदित नहीं होगी। पर जितनी मात्रा में व्यग्र चित्त से भगवान का स्तुति नति किया जाए, भगवान का जप किया जाए, उनके नाम का उनकी कथा व्यग्र होकर के हमारे चित्त में जब जाती है तो वहां भगवान के प्रति व्यग्रता उत्पन्न करती है, उत्कंठा उत्पन्न करती है, एक लालसा निर्माण होती है। और वो लौल्य, बस ये लोभ चाहिए। अगर एक लोभ आ जाए ना उनके बाग तो भक्ति रागानुगा हो पड़ेगी, हैं, उनको फिर घसीटना नहीं पड़ेगा। हम लोग विधि भक्ति कर रहे हैं इसलिए घसीट घसीट करके उनको बहुत प्रयत्न पूर्वक करना पड़ता है हम लोग को। लेकिन जैसे वो राग में परिवर्तित हो जाएगी, चित्त शुद्धि पर ऐसा होता है। लेकिन उससे पहले व्यक्ति को उपाय कुछ जीव गोस्वामी प्रभु बता रहे, बहुत सुंदर उपाय है। वो कहते प्रथमम नामन श्रवण अंतकरण स्मरण शुद्धि अपेक्षार्थम। व्यक्ति को चाहिए कि खूब नाम जप करे, क्योंकि चित्त शुद्धि के लिए नाम जप अनिवार्य वस्तु है। सुनिश्चित उनके साथ साथ अधिकतर श्रवण रहना चाहिए, अन्यथा तो नाम जप भी पंगु हो जाएगा। ये दोनों परस्पर है, कथा श्रवण और नाम में रुचि, ये एकदम परस्पर चलता है। इसलिए श्रवण कीर्तन और स्मरण तीन वस्तु आचार्य लोग बताते हैं, प्रधान तीन वस्तु। ये कहते इससे क्या होता है, नाम जप की बहुत अपेक्षा चित्त शुद्धि के लिए होती है। और शुद्धच अंधकरण रूप श्रवण तद उदय योग्यता भवती। जब हम लोग भगवान का नाम लेते, जितनी मात्रा में हमारा अंतकरण शुद्ध होगा उतनी मात्रा में भगवान के रूप के श्रवण की योग्यता हमारे हृदय में उत्पन्न होगी। भगवान का रूप, जैसे रूप की कथा आती है कि भगवान चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा पद्म, और उनके गले में उनको कौस्तुभ मणि है, तो लोग सोना चालू करते हैं। थोड़ा सिद्धांत बाद आता है तब चौकन्ना होकर के गोलियां भरते हैं, वो तो गोलियां भरना होता है, वो बैठ करके हम गोलियां भरते हैं। लेकिन जब भगवान के रूप का वर्णन आता है उसी टाइम अगर बुद्धि फेस्टिवल करती है, समझना चाहिए कुछ कुछ चित्त शुद्ध हुआ है, तो वही वो चित्त सो जाएगा। जैसे सिद्ध, ये भी एक सिद्धांत है लेकिन ये थोड़ा ऊपर का सिद्धांत है, भगवान के रूप के श्रवण की योग्यता। अभी रूप, उन रूप को हमारे कर्णों के द्वारा ग्रहण करना होगा, कान के द्वारा ग्रहण करना होगा, तब देखने की योग्यता होती है। उसको कैसे होती है वो बताते हैं, वो धीरे धीरे होती है, अचानक नहीं हो जाता है। हाँ, वो कहते हैं कि उन रूप की श्रवण की योग्यता हृदय में आ जाती है, और जब हृदय उसको पकड़ता है सम्यक उदेचित रूपे गुणनाम स्मरण संपद्येत। और जब भगवान के रूप श्रवण में बुद्धि जब उत्सव मनाती है, आहा अभी कोई विषय आया, जब भगवान के रूप का वर्णन आता है तो लगता है आहा बस वही करता रहे वही करता रहे। जब इसी प्रकार इच्छा होगा तब कहते हैं भगवान के गुणों का स्फुरण होगा चित्त में। हृदय भगवान के गुणों को पकड़ना चालू करेगा, और जितनी मात्रा में हम भगवान के गुणों को पकड़ेंगे, वो गुण भगवान का नहीं हमारा है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। दोनों वस्तु वसुदेव धरातल पर है, भगवान की शक्ति जीव और श्री भगवान, ये वसुदेव प्लेटफॉर्म का वस्तु है दोनों। ये इसको कहते हैं वासुदेव प्लेटफॉर्म, विशुद्ध सत्व। चित्त शुद्धि होने पर चित्त विशुद्ध सत्व में एंट्री ले लेता है, और उसी समय उन चित्त में भगवान के गुणों का स्फूर्ति होता है। रूप श्रवण जब सुष्ट होने लगता है भगवान का, और उन रूप में मन रमने लगता है, तो उस टाइम गुणों का स्फुरण होता है। अत्यंत करुणामय भगवान की गुणावली स्फुरित होती है, आत्यंतिक गुण है भगवान में। जितने भी गुण है वो अनलिमिटेड गुण है, इसलिए अहो बकीयम स्थल काल कुटम,
ये जब श्लोक सुखदेव गोस्वामी पाद समाधिस्थ थे उनके कान में गया, उनकी समाधि भंग हो गई। चलिए इतना अनलिमिटेड करुणा किसके पास है। और जो विष पोत करके मारने के लिए आने वाली वो पुतना को माता की धात्री गति प्रदान किया, ये कैसे हो सकता है? ये कोई जीव का गुण हो ही नहीं सकता। जीव कितना भी गुणवान हो जाए, भौतिक तरीके से, लेकिन वो पकड़ नहीं पाएगा। जब तक वो भगवान के गुणों को स्पर्श नहीं करेगा, तब तक उनका जो हृदय का गुण है वो माइक रहेगा रहेगा, और उसमें पार्टीबाजी रहेगी रहेगी। ये मेरा ग्रुप और ये तेरा ग्रुप, इसका ग्रुप का है, वही खींचेंगे हम लोग, और वही कुंठ का सबसे बड़ा योग्यता वही है। व्यक्ति योग्य बन नहीं पाएगा, क्योंकि यही भौतिक बुद्धि है, इसी को भौतिक बुद्धि अहम मम इति, और क्या है, हमारा है, सब जीव हमारे हैं। प्रभुपाद जी ने सोचा होता था इसी प्रकार का, ये ग्रुप थोड़ा इंडिया में तैयार हुआ है वही हमारा है, फॉरेन कौन जाएगा? हम लोग सोच सकते कि हम लोग श्रवण करते थे भागवतम का, सोच सकते ये उनके हृदय में कोई ग्रुप बाजी नहीं थी कि इंडियन है, इनके पास ही संस्कार है, उनको द्वारा पूरे विश्व के जीव योग्य है। चूंकि सौहार्द उत्पन्न हो गया था भगवान की भक्ति के कारण, उन श्रील प्रभुपाद महाराज का चित्त में लबालब सौहार्द भरा था जीवों के प्रति, इसलिए श्रील प्रभुपाद महाराज एक लीला ग्रंथ श्रवण करते, उस टाइम का एक घटना याद आ रहा है। सब डंडा डंडा था उस टाइम, संन्यास बहुत लोग ले लिए थे श्रील प्रभुपाद महाराज, कौन समय की बात है ठीक से मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन एक घटना है कि जन्माष्टमी का समय है, समय था, और श्रील प्रभुपाद महाराज वो कृष्ण लीला चरित्र स्वयं लिखे हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से पाठ चला रहे थे। उन पाठ चलाते टाइम प्रभुपाद जी बोलते आगे बढ़ो, एक चैप्टर खत्म होगा उनके बाद बोलते और दूसरा चैप्टर चालू करो और तीसरा चालू करो। लोग बोल रहे हैं कब तक श्रवण करेंगे भाई, और डंडा इधर उधर होने लगा, लटकने लगा, कहीं डंडा किसी के ऊपर गिर रहा है, बोले एक चैप्टर खत्म हो तो बस अभी खत्म हो गया, लगते प्रभुपाद जी बोलेंगे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय, लेकिन वो बोले नहीं नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि उनका चित्त फेस्टिवल कर रहा था, उनके पास वो योग्यता थी, भगवान की उन लीलाओं को श्रवण करने की योग्यता थी। नहीं समझ में आ रहा है, सहज समझ में आने वाली बात है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सहज ही समझ में, क्यों सब का चित्त उन लीलाओं में क्यों नहीं लग रहा था, और क्यों प्रभुपाद जी नेक्स्ट चैप्टर बोलते जा रहे, नेक्स्ट चैप्टर क्यों बोलते जा रहे, क्योंकि उनका हृदय योग्य हृदय था। वो कहते कि संपन्न च गुणानाम स्मरणो परिकर वैशिष्ट्य तद वैशिष्टम संपद्यते। देखिए जब भगवान के गुण का स्मरण चित्त में होने लगता है, उन भगवान की गुणावली और अद्भुत तरीके से हृदय पकड़ने के योग्य हो जाता है, तो उस टाइम कहते हैं कि उस टाइम उन गुण के अनुसार उनके परिकर स्फुरित होते हैं। जैसे वात्सल्य गुण का वर्णन भगवान का है तो यशोदा माँ का स्फुरन होता है, अरे माँ यशोदा किस आनंद को प्राप्त कर रही है, या ब्रजवासी वो भगवान की लीलाओं से, उन भगवान के उन कार्य से वो कैसे अत्यंतिक रूप में उनका चित्त हरण कर लिया था उन लीलाओं ने, चित्त चला जाता है। साथ में चला जाता है जो लोग भगवत लीला का अनुभव किए। एक बार ब्रज की एक घटना है, याद आता है घटना। एक नई ब्याही हुई गोपी ब्रज में आई थी। आप जानते हैं ना कि गोपी बन के कृष्ण काल में ब्रज में आना उसका अर्थ उनका साधना समय पूरा हो गया था। बहुत बहुत साधना की थी, अगले जीवन में स्वाभाविक कृष्ण स्फूर्ति हृदय में थी और कृष्ण लीला कथा का इतना अनुराग था वो ब्रज में ब्याह करके आई। अब ब्रज में आने के बाद उनकी सास ने सबसे पहले खबरदार बोला, सबसे बोला यहां एक काला सर्प रहता है, सबको डस लेता है, वृंदावन में रहने वाले व्यक्ति समझ ले, नए आए हो तो चौकन ना रहे, यहां रहता है ब्रज में है। उनकी सास ने बोला कि देखो सुबह सब लोग दौड़ दौड़ करके जाते, तुम नहीं भागना, घर का बहुत सारा काम है, ये तो एक मैं हूं कि सारा काम इधर घर में घसीटती हूं। बोला क्या बात है, ये क्या बोल रही है, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हुआ ये कि जैसे बोर हुई और भगवान बांसुरी वादन किए गोपियों का नाम लेते हुए या बांसुरी का वादन सुना, जैसे ही सब लोग भागने लगे, सब घर से, सब गोपी लाइन से, कोई अपनी अटारी पर, कोई पेड़ के पीछे, या वह कोई मार्ग में वो खड़ी हो गई जा करके। और इसके घर से भी उनकी जेठानी भागी, उनकी ननन भागी, बोले सब लोग भाग रहे हैं और स्वाभाविक बंसी से वो भी आकृष्ट हो गई थी। अरे इनको मैं सुना हूं कहां सुना पता, पूर्व जन्म का जो अभ्यास था, उन अभ्यास के कारण तो वो भी भागी, सास इधर उधर रही भागी, और भाग करके ये पेड़ के पीछे जाकर के सास न देख ले पेड़ की ओट में जाकर के कृष्ण को देखने लगी। और भगवान श्री कृष्ण ने जान लिया एक नई आई है, तो कौन नया आया है, कौन पुराना है, कौन कितने टाइम से घसीट रहा है, भगवान जानते हैं सब कुछ है। एक नई आई है और एक छोटे से बछड़े को पूछ ऐसा घुमाया और वो फुदकता हुआ सीधा वहां गया। भगवान प्रेरणा करते हैं ना सबके हृदय में, वो फुदकता हुआ बिल्कुल नई आई थी जिस पेड़ के पीछे, वहां जाके बच्चा खड़ा रहा। भगवान कृष्ण को बोले दावजी वो बछड़ा इधर उधर जा रहा है, बोलते हाँ जाकर क्या हो, दावजी तो जान गए क्या है, ठीक है जाकर क्या हो। और वो गए वहां, एक सेकंड दिबंग ललित उनके सामने हो गए, वो तो बछड़े का बहाना करके उनको दर्शन करना चाहते, उनकी चित्त को चोरी करना चाह रहे थे। एक सेकंड खाली, एक मिनट का बहुत ज्यादा टाइम है, भगवान ने तुरंत अपना त्रिभंग ललित और बांसुरी रख दिया एक सेकंड के लिए, बस 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 उनका चित्त उसमें बिल्कुल चला गया। भगवान श्री कृष्ण वो बछड़े को लेकर के वन में चले गए, घंटे हो गए लेकिन ये वहीं खड़ी है, हिलने का नाम, क्योंकि चित्त तो गया भगवान के साथ, क्या सौंदर्य है बोलते हैं, और चित्त उनके साथ गया। अभी क्या, अभी कोई काम की नहीं, और सास खोजती हुई आई, अरे क्या हो गया, ये तो ब्रज में भी चले गए कृष्ण और सब लोग वापस आ गए, ये क्यों नहीं आई। वो खोजती हुई गई और जाकर के टटोला, इधर पेड़ के पीछे थी, है मैं जो बोलती थी ना वही आखिर हो गया, चलो चलो घर बहुत काम पड़ा है बहुत। और जैसे तैसे हिला करके घर लेकर के आई, वो बोले घर में उन मटकी में दही रखा है, जल्दी जाओ उन दही को मतना अभी तक बाकी है। वो मटके उठाया और अंदर मथानी डाला और एक रस्सी बांधा खंबे पर और दूसरा मत सरसर सरस कर्कश आवाज चालू हुआ, सरल सरल। वो सास कहीं बाहर काम कर रही थी, बोले ये क्या कर रही है, अंदर जाके देखा तो सरसों मथ रही थी, मटका बहुत होता है ना, उनका चित्त उनके पास नहीं था दही की जगह, सरसों का मटका लिया और वो मथने लगी,
क्योंकि चित्त कृष्ण के पास चला गया था।
बोले अरे 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 छोड़िए, तेरा काम नहीं तेरे बस का, देखा मटका ले लिया, बोलते मैं काम कर लूंगी, तू जा ये बच्चे को ले, वो बच्चा रो रहा था उनकी जेठानी का, बोले इसको ले और ऊपर दो चार खड़ा चढ़ाए पानी भर के आ जा कुएं से, और वो बच्चे को ले करके पानी भरने कुएं पर गई। और कुएं पर जैसे पानी भरने गई तो उन्होंने मटका उतार करके का एक साइड, बच्चे को उतार करके साइड में बिठाया, मटका भी था, और वो रस्सी बांधने लगी बच्चे के गले में। अरे बोले अरे अरे ये क्या कर रही है, उनको कोई प्रेत लग गया है, भूत लग गया है, क्या हो गया? बोले भूत नहीं, नंद का सूत लग गया है इसको। भूत क्या लगेगा, नंद का सूत लगा है। वास्तविकता ये है, जब तक हमारा चित्त उन भगवान की लीलाओं में रमण नहीं करता है, तब तक उनका स्फूर्ति हृदय में नहीं होता है, उन लीलाओं का, उन लीला की स्फूर्ति हृदय कहते हैं कि गुणनाम स्पूर्ण तो परिकर वैशिष्टे न तद वैशिष्टम संपद्यति, और तब उन 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 परिकर सामने, जो जो रस के परिकर है वो परिकर सामने आ जाएंगे, और वो परिकर सामने आते ही कहते बहुत सुंदर, कहते उसके बाद में स्फूर्ति, तो कहते नाम रूप गुण परिकर सम्यक स्फूर्तिषु लीला आनंदम स्फूर्णम सुष्टु भवती, कहते उन परिकरों के साथ जब वो लीला हृदय में प्रकटित होती है तो वो कहते हैं कि बस बस सुष्टु, तत्रापि श्रीमद् भागवतम श्रवणम श्रेष्ठम, फिर भी व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम का पाठ छोड़ना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। ठीक 9 बजा है, आप लोग के पास कोई प्रश्न है तो आप मेरे पास आकर पूछ सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की शिल प्रभुपाद की, ताई गौरा हरि ब्रह्मानंदे।